धौला पुस्तक 11वीं लेक्चर नंबर 5। ओ
नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य
ओ नमः सिद्धेभ्य ओ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं
कम्मट्ठजनियवेयण वहिसमुत्तिन्नये जिनेनमिहुं वेयण महाहियारं विविहियारं परुवेमो।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है वेदना नामक, उसमें अपना यहाँ का विषय है वेदना क्षेत्र विधान अनियोग द्वार। ये 11वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 31 पर हम आ गए, 31। यहाँ हमने जो अनुत्कृष्ट द्रव्य वेदना है उसकी बात चल रही थी अपनी, और वो वेदनी की बात चल रही थी, ज्ञानावरण और अन्य तीन घाती कर्मों की बात हमने देख ली थी, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट। अब यहाँ हमको देखना है कि वेदनी की वेदना उत्कृष्ट किसके होती है, यानी जो अघाती कर्म है तो केवल ज्ञानी जब लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं तब वो उत्कृष्ट होती है, उसकी बात हमने कल पढ़ी थी। अब जो उत्कृष्ट नहीं है वो अनुत्कृष्ट है, परंतु जैसे ज्ञानावरण में हमने अनुत्कृष्ट के भेद एक एक प्रदेश से घटते हुए अलग अलग घटित करके देखा था, वैसे यहाँ नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट तो लोक पूर्ण है और अनुत्कृष्ट में जो मैक्सिमम वाला भेद है वो तो प्रतर वाला है। फिर अन्य जो दूसरा अनुत्कृष्ट कितना होगा, तो वो पूर्वाभिमुख जो कपाट वाला है वो उसको होगा, उसमें भी बढ़िया उगाना वाला है तो बढ़िया हो, यानी बढ़िया उगाना वाला होता है 525 धनुष वाला, तो उसकी यानी विर्थ भी उतनी ज्यादा होगी तो उसका ज्यादा होगा, और जो उत्तराभिमुख होगा उसका उससे कम होगा। तो इस तरह से वो उसके यानी वो तो एरिया वाइज उसके जो हमने देखा था कि 525 धनुष वाले हाइट वाले के वहां से लेकर 3.5 हाथ वाला जो है वहां तक की जो अवगाहना के भेद है उतने अनुत्कृष्ट के भेद होंगे वहां पर पूर्वाभिमुख में ही। यहां तक हमने पढ़ा था 31 नंबर पेज पर। चौथी लाइन, फिर इस सर्वजघन्य अंतिम क्षेत्र के सदृश, यानी तो 3.5 रत्नी उच्छेद वाला जो है उसकी अवगाहना की विष्कम्भ, परंतु वो पूर्वाभिमुख था, अब ये जो है उसके समान अभी उत्तराभिमुख। पहले पूर्वाभिमुख ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा नहीं था, वो हमने डिराइव करके देखा, पर अभी अब बता रहे कि उत्तराभिमुख कपाट क्षेत्र को ग्रहण करके पश्चात उससे विष्कम्भ में एक एक प्रदेश कम करके, यानी अभी तो उत्तराभिमुख और पूर्वाभिमुख में आधे का डिफरेंस था, अभी वो डिफरेंस इन्होंने अवगाहना के द्वारा घटित करके देखा। अब उसके समान जो उत्तराभिमुख वाला का क्षेत्र होगा उसको ग्रहण करके उसमें से भी एक एक प्रदेश कम करते जाना विष्कम्भ में, तो कपाट समुद्घात को लेकर उत्तराभिमुख केवली के जघन्य कपाट क्षेत्र को प्राप्त होने तक, यानी उसके भी 3.5 रत्नी वाला जो उच्छेद वाला जो जीव है उसकी जो अवगाहना होगी यानी उसकी जो विर्थ होगी उसके द्वारा ये घटित करना है। क्षेत्र विकल्पों के स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए, पुनः उसके बाद अनुत्कृष्ट कौन सा होगा, तीन विग्रह कांडकों द्वारा 7वीं पृथ्वी में मारणांतिक समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त महामत्स्य तदनंतर अधस्तन अनुत्कृष्ट क्षेत्र का स्वामी है। क्योंकि उक्त जघन्य कपाल क्षेत्र से ही और दूसरा अनुत्कृष्ट क्षेत्र पाया नहीं जाता। विशेष इतना कि जघन्य कपाल क्षेत्र से महामत्स्य का उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात गुणा हीन है। हाँ, पेज नंबर 31 पर आना। कल हमने जो देखा था, समुद्घात की अपेक्षा अनुत्कृष्ट क्षेत्र, वेदनीय द्रव्य का अनुत्कृष्ट क्षेत्र हमने घटित किया था। उसमें सबसे जघन्य हमने देखा था कि पूर्वाभिमुख वाले के 3.5 हाथ अवगहना के साथ जो विष्कम्भ होगा उसके द्वारा हमने घटित किया था। उसके बाद वैसा ही उत्तराभिमुख वाले का उतना क्षेत्र वाला जो जीव है उसकी अपेक्षा बात करके उसमें भी एक एक प्रदेश के हीन अवगहना घटित करना। उसके बाद वो महामत्स्य वाली बात दी उन्होंने, दंड वाले को नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि दंड वाली एरिया कितनी होगी, क्योंकि वो जीव की अवगहना जो है, और ऐसा 14 राज्य
और जीव
कपाट के बाद दंड को नहीं लिया, महामत्स्य को लिया। देखो दंड में करीबन 14 राज्य भी लेते हैं, परंतु उसकी एरिया कितनी होगी जो वो जीव है उसकी जो अवगहना के हिसाब से, यानी उसका जो गोलाकार क्षेत्रफल है उसको 14 राज्य से गुणा करो, और यहाँ महामत्स्य की अवगहना कितनी, 500 × 250, और उसको 3 गुणा किया था, यानी 3 × 3 9 गुणा करके, और फिर उसको 7.5 राज्य बनाया था, यानी उसकी एरिया ज्यादा है। ज्यादा है फिर भी वो कपाट से असंख्यात गुणाहीन है, यानी वो अनुत्कृष्ट के अलग अलग विकल्प हम देख रहे थे। पेज नंबर 31 पर 31 ये वेदनी की वेदना की बात चल रही है अपनी, यानी उसके आगे वो ज्ञानावरण के समान घटित हो गए जब हम महामत्स्य को लेते हैं। तो अब यहां से आगे पूर्वोक्त घाती कर्मों के विधान से उपरिम क्षेत्र विकल्पों की प्ररूपणा करना चाहिए। उपरिम यानी अनुत्कृष्ट के आगे आगे वाले भेद एक एक प्रदेश से घटते हुए हमने देखे थे। दंडगत केवली के संख्यात प्रतरांगुल मात्र क्षेत्र स्थान चूंकि महामत्स्य के क्षेत्र के भीतर आ जाते हैं अतः उनकी पृथक प्ररूपणा नहीं की गई है। जो महामत्स्य की एरिया हमने कैलकुलेट की थी उसमें किसी भेद के साथ वो दंड वाली की एरिया समान हो जाती है, इसलिए उसकी अलग से प्ररूपणा नहीं बताई। दंड समुद्घात को करने वाले सभी केवली शरीर से तिगुणे बाहल्य से उक्त समुद्घात को नहीं करते क्योंकि उनके वेदना का अभाव है, यानी उनका अपने जो शरीर का बाहल्य है उतने ही दंड करेंगे, वो तिगुणा नहीं होता है। शंका, तो फिर कौन से केवली शरीर से तिगुणे बाहल्य से दंड समुद्घात को करते हैं? सभी नहीं करते ऐसा लिखा, तो सभी नहीं करते तो कुछ तो करते होगे ऐसा अर्थ होता है। तो समाधान, पल्यंक आसन से स्थित, पल्यंक आसन कहो पद्मासन कहो, केवली उक्त प्रकार से दंड समुद्घात को करते हैं। यानी हमने पहले नक्की किया था कि जो खड़े होकर करते तो उनकी एरिया इतनी फैली हुई नहीं, बैठेंगे पल्यंक आसन करेंगे तो जैसे ऐसा बैठे हैं तो ये एरिया बढ़ जाती है, तिगुण हो जाती है, और उतनी पूरा यानी राउंड जो है उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। बत्तीस नंबर पर आते हैं, इन क्षेत्रों के स्वामी जीवों की प्ररूपणा करने में 6 अनुयोग द्वार है। उनमें प्ररूपणा अनुयोग द्वार की अपेक्षा वेदनीय कर्म के सब क्षेत्र विकल्पों में जीव है प्ररूपणा समाप्त हुई। यानी सबसे उत्कृष्ट देखा, फिर अनुत्कृष्ट वाला प्रतर वाला देखा, कपाट में पूर्वाभिमुख देखे, फिर उसमें से उसकी अवगाहना कम करते करते देखे, फिर उत्तराभिमुख ने देखे उनकी भी अवगाहना कम करते करते देखे, उसके बाद एकदम जंप करके वो महामत्स्य आया। इस तरह से उसके सारे विकल्प यहाँ समझना है। तो ये सभी में जीव है का अर्थ होता है किसी न किसी जीव की कभी न कभी इतनी अवगाहना पाई जाएगी, ये प्ररूपणा समाप्त हुई। अब कहते उत्कृष्ट स्थान में जीव कितने हैं, संख्या थे। उत्कृष्ट स्थान कौन सा देखा था, लोकपुरण, उसमें संख्या जीव है। हमने पहले देखा था उसका 40-60 भी कहा था उन्होंने एक पुस्तक में, यानी कपाट में दंड में 20 और 20 40 लिए थे, परंतु लोक पुराण में उन्होंने 60 जीव घटित कर दिए थे, पहली बात आई थी उसमें। तो कहते उत्कृष्ट स्थान में जीव कितने हैं तो संख्या थे। इस प्रकार कपाट समुद्घातगत केवली के जघन्य क्षेत्र विकल्प तक ले जाना चाहिए। ये जो अलग अलग विकल्प बताए उसमें एट ए टाइम कितने मैक्सिमम जीव हो सकते हैं, तो कहते संख्यात हो सकते हैं। हमेशा ही पाए जाएंगे ये बात नहीं है, क्योंकि हर समय कोई नहीं करेगा, जब कोई करते हैं तो उसमें उत्कृष्ट संख्या बताई जाती है। आगे महामत्स्य के उत्कृष्ट क्षेत्र से लेकर त्रस योग्य क्षेत्रों में असंख्यात जीव है, तो उत्कृष्ट करने वाले एट ए टाइम कितने होंगे महामत्स्य, तो क्या असंख्यात जीव एट ए टाइम कर सकते हैं। वनस्पति कायिक योग्य क्षेत्रों में अनंत जीव है, हमने देखा था वनस्पति कायिक जीव, क्यों महामत्स्य के बाद वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति देखी थी, यानी जो कमल 1000 योजन अवगाहन है, यानी 750 घन योजन उसकी एरिया थी, परंतु उसके मारणांतिक की अपेक्षा उन्होंने घटित कर दिए थे, तो उसमें तो अनंत जीव होते हैं। इस प्रकार यानी वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक में अनंत नहीं, पर केवल वनस्पति कायिक ली है, तो उसमें उत्कृष्ट भेद नहीं लेना, कोई भी अनुत्कृष्ट भेद लेना है तो सारे निगोद राशि भी उसके अंदर आए, वनस्पति कायिक कहने से निगोद भी आ गए, इसलिए उसमें अनंत जीव है ऐसा कह दिया। हम 32 नंबर के पृष्ठ पर आए, देखो कल हमने केवली की अवगाहना देखी थी, उत्कृष्ट से लेकर 3.5 हाथ तक वो पूर्वाभिमुख थे, उसके समान जो उत्तराभिमुख होगा, फिर उसके भी जघन्य अवगाहना तक ले आना। हाँ, ये सारे अनुत्कृष्ट के हो गए। कपाट के बाद दंड को नहीं लिया, कपाट के बाद वो वेदना समुद्घात वाला नरक में जाने वाला महामत्स्य लिया अनुत्कृष्ट के क्षेत्र में, फिर कल जैसे हमने घटित किए थे ज्ञानावरण के, वैसे उनके भी अनुत्कृष्ट के भेद ले लेना, सारे आगे के समान है, उस सारी उसका आगे की प्रवृत्ति समान थी। अब यहाँ जो हम 32 पेज पर देख रहे थे कि ये जो स्वामी की प्ररूपणा करने में 6 अनुयोग द्वारे, जैसे हमने वहां पर भी देखे थे ज्ञानावरण में, वैसे यहाँ पर भी पहले में पहले प्ररूपणा ने वो हर एक विकल्प है उसमें जीव है, ये उसकी प्ररूपणा हो गए। अब कितने हैं तो उसका प्रमाण बताएंगे, तो समुद्घात वाले वो संख्यात हो गए, और बाकी वेदना समुद्घात वाले जो महामत्स्य के वहां से लेकर असंख्यात असंख्यात होते ये बात बताई उन्होंने, और वनस्पति कायिक के योग्य जो क्षेत्र होगी उसमें अनंत जीव होते हैं, क्योंकि वनस्पति कायिक ही अनंत है इसलिए उसमें अनंत बता दिए। अब कहते ये प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हुई। अब श्रेणी प्ररूपणा बतलाना शक्य नहीं है, क्योंकि उसके विषय में प्रवाह स्वरूप से प्राप्त हुए परंपरागत उपदेश का अभाव है। श्रेणी प्ररूपणा ने एक एक जो स्थान है उसमें क्या पोजीशन है, बढ़ते हुए है कम होते हुए, ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। अब अवहार की प्ररूपणा करते हैं, अवहार का अर्थ होता है भागहार, सब जीवों को कौन सी संख्या से भाग देने पर वो संख्या आती है, तो कहते उत्कृष्ट स्थान में रहने वाले जीवों के प्रमाण से सब जीव कितने काल से अपहृत होते हैं, तो कहते वे प्रमाण से अनंत काल में अपहृत होते हैं। हमेशा अपहार वो काल में बताया जाता है, यानी पूरे जीव संख्या जीवों की जो संख्या अनंत जीव राशि है उसको अनंत से भाग देंगे तो वो संख्यात राशि आ जाएगी, जो कोई 40 या 60 जो हम मानते हैं उतने। इस प्रकार त्रस कायिक, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेज कायिक और वायु कायिक योग्य स्थानों तक ले जाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, अभी इनकी अपनी अपनी संख्या कितनी है, तो असंख्यात लोक है, तो असंख्यात लोक पूरे जीव राशि वाले अनंत को किस संख्या से भाग देने पर वो अनंत असंख्यात लोक संख्या आएगी, तो अनंत से, इसलिए वहां पर भी अनंत काल से अपहृत हो गए। अब कहते सूक्ष्म बादर वनस्पति कायिक योग्य स्थानों संबंधी जीवों के प्रमाण से सब जीव कितने काल से अपहृत होते हैं, उक्त प्रमाण से वे असंख्यात काल में अपहृत होते हैं, यानी पूरे जीव राशि वाला जो अनंत है वो सूक्ष्म निगोद राशि उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण है, वो भी अनंत है, पण टोटल जीवों के असंख्यात विभाग प्रमाण है। अब भागा भाग की प्ररूपना करते हैं। उत्कृष्ट स्थान में रहने वाले जीव सब स्थानों संबंधी जीवों के कितने विभाग प्रमाण है, वे उनके अनंत विभाग प्रमाण है। अवहार काल में वही बताया था ना, किससे अपरत होते हैं, अनंत से। अब यहाँ भागा भाग में कहेंगे वो अनंत विभाग प्रमाण है। जघन्य स्थान में रहने वाले जीव सब स्थानों संबंधी जीवों के कितने विभाग प्रमाण है, वे उनके असंख्यात विभाग प्रमाण है। क्योंकि जघन्य स्थान हमने देखा था कौन सा होगा, वेदनीय के बारे में जघन्य स्थान, जघन्य। हाँ बोलो। हाँ वो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त, जघन्य उघाना वाला जीव लेना, जैसे ज्ञानावरण में लिया ना, वो आगे के स्थान से सेम है दोनों के लिए। तो वो जीव अनंत हो गए, इसलिए वो टोटल जीवों के असंख्यात पे भाग प्रमाण कहा। अजघन्य उत्कृष्ट स्थान में रहने वाले जीव सब स्थानों संबंधी जीवों के कितने विभाग प्रमाण है, वे उनके असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। वो संख्यात का असंख्यात करो ब्रह्मा, क्योंकि असंख्यात वह भाग छोड़ा तो बाकी रहे हुए असंख्यात बहुभाग हो रहे हैं। आपके उसमें क्या लिखा है, संख्यात है कि असंख्यात?
हाँ,
प्राकृत में लिखे ना असंख्यात जा भागा, असंख्यात बहुभाग। प्राकृत में, प्राकृत का रेफरेंस बता रहे, असंख्यात जा भागा। भागा भाग प्ररूपना समाप्त हुई। अब अल्पभूतव कहेंगे, अभी 1, 2, 3 नंबर देंगे। उत्कृष्ट स्थान में जीव सबसे स्तोक है, उनसे जघन्य स्थान में जीव अनंत गुणे हैं। जघन्य स्थान यानी सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक में, उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थान में जीव असंख्यात गुणे हैं। यानी जघन्य भी छोड़ो, उत्कृष्ट भी छोड़ो, बाकी सब। उनसे अजघन्य स्थान में जीव विशेष अधिक है। विशेष अधिक यानी उसमें उत्कृष्ट वाला जोड़ लिया है। उनसे अनुत्कृष्ट स्थान में जीव विशेष अधिक है, यानी उत्कृष्ट छोड़ा और खो लिया। उनसे सब स्थानों में जीव विशेष अधिक है। इस तरह ये वेदनी की वेदना में पूरे ही 6 अनुयोग द्वार बता दिए स्वामित्व में। अब ये नया सूत्र पढ़ेंगे 18 नंबर का। एवं आवरणामा गोदानम, इसी प्रकार आयु नाम व गोत्र कर्म के उत्कृष्ट एवं अनुत्कृष्ट वेदना क्षेत्रों की प्ररूपना करनी चाहिए। क्योंकि जो केवली समुद्घात करते हैं तो उनके वो आयु भी, आयु के परमाणु भी है ना वहां पर समुद्घात में, वो सारा कर्म भी फैलेगा। तो कौन सी आयु होगी? मनुष्य आयु होगी। और गोत्र कौन सा होगा? अरे पन सत्ता में पड़ा है ना निज गोत्र। अब निज गोत्र की कहाँ संक्रमण हुआ है, उसका ये नष्ट नहीं हुआ है, वो बात है प्रकृतियों में, वो गिना जाएगा। ख्याल में आई बात?
सत्ता की बात
तो प्रदेश फैलेंगे तो उसमें सत्ता वाले कर्म फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? उच्च गोत्र निज गोत्र दोनों हो गए, साता साता वेदनीय दोनों हो गए, नाम कर्म कौन से हो गए? कितने हो गए 93 में से, कितने हो गए? कल बात आई थी ना आप, 80 हो गए। 13 प्रकृतियों का क्षपणा 9वें गुण स्थान में हो जाते हैं। यानी वो 16 का होता है ना, उसमें से 3 तो दर्शनावरण की थी, 3 निद्रा, और बाकी 13 तो नाम कर्म की थी, जैसे नरक गति के द्विक, तिरंज गति द्विक, आतप उद्योत स्थावर है, एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय जाति है, और आतप उद्योत स्थावर है ना, सूक्ष्म और साधारण है, ये सब जो 13 प्रकृति वहाँ। हाँ, अपर्याप्त नहीं जाता वहां पर, सूक्ष्म और साधारण जाता है। तो देखो अभी 33 नंबर पर, इसी प्रकार आयु नाम व गोत्र कर्म के उत्कृष्ट एवं अनुत्कृष्ट वेदना क्षेत्रों की प्ररूपना करनी चाहिए। क्योंकि वो सारे आघाती कर्म है ना, उनमें समानता होगी वो तो। जिस प्रकार वेदनीय कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्षेत्र की प्ररूपना की गई है, उसी प्रकार आयु नाम व गोत्र कर्म के भी उक्त क्षेत्रों की प्ररूपना करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है। यहाँ तो हम मूल प्रकृतियों की बात देख रहे हैं, उसमें उत्तर प्रकृतियों की बात तो नहीं, पर हम सोच सकते हैं ना। यहाँ पर इस प्रकार उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट क्षेत्र प्ररूपना समाप्त हुई। अब 19 नंबर का सूत्र, सामित्तेन जहन्न पदे नाना वर्णीय वेयना खित्तदो जहन्निया कस। अभी उत्कृष्ट में पहले ज्ञानावरण के उत्कृष्ट किसके होती है, अनुत्कृष्ट के सारे विकल्प देखे, फिर वेदनीय और अन्य अघाती की बात देखी, यानी घाती की अलग देखी, अघाती की अलग देखी। अब कहते जघन्य की बात करेंगे, ज्ञानावरण की जघन्य किसके होती है, तो कहते स्वामित्व से जघन्य पद में ज्ञानावरणीय की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य किसके होती है। जघन्य पद का निर्देश शेष पदों के प्रतिषेध के लिए किया है। शेष पद ने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजघन्य उसका निषेध करके जघन्य की केवल बात करेंगे। ज्ञानावरणीय का निर्देश शेष कर्मों का प्रतिषेध करने वाला है। देखो जघन्य के बारे में तो कहेंगे सभी, यानी आठों ही कर्मों का जघन्य समान होगा, है ना? हाँ, उत्कृष्ट में घाती अघाती का डिफरेंस पड़ा था, जघन्य में तो सभी है। वहां पर जघन्य जो सूक्ष्म निगोद की जो अवगाहना है जघन्य, उतना उसका क्षेत्र होगा। क्षेत्र का निर्देश द्रव्यादिक का प्रतिषेध करता है, यानी क्षेत्र की बात पूछी है तो उसमें मात्र क्षेत्र की बात है, वो कितने प्रमाण में द्रव्य है यानी परमाणु की संख्या, उसकी बात यहां नहीं बताएंगे। किसके होती है, इस निर्देश से देव व नारकी आदि विषय पृच्छा प्रकट की गई है। आदि यानी देव को होता है कि नारकी के होते हैं कि मनुष्य होते हैं कि तिर्यंच के होते हैं, अभी उसकी स्पेसिफिकेशन सारी बताएंगे 20 नंबर के सूत्र में। अन्न दरस्य सुहमणिगोद जीव लद्य पद्यतस्य ती समय आहारयस्य ती समय तब्भवत्थस्य जहन्न जोगिस्य सव जहन्नियाय शरीरोगाहनाय वट्टमानस तस्य नानावर्णीय वेयना खेत्तदो जहन्ना। अभी कितने कितने कंडीशंस डाली है, हम तो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त तक कहते हैं, परंतु वो भोग का तीसरा समय होना चाहिए। देखो अन्यतर सूक्ष्म निगोद जीव लब्धि अपर्याप्त तक जो कि वो की बराबर करो जो कि त्रि समयवर्ती आहारक है। आहार यानी अभी शरीर धारण करने का उसका तीसरा समय है, तद्भवस्थ होने के तृतीय समय में वर्तमान है, यानी तद्भवस्थ भी तीसरा समय किया, यानी वो तो रुजुगति से आया होना चाहिए ऐसा लगता है इसमें, क्योंकि त्रि समयवर्ती आहारक और तद्भवस्थ का तीसरा समय जघन्य योग वाला है, क्योंकि उसमें भी योग की अलग अलग कंडीशंस होगी, तो मिनिमम योग वाला ले लिया है। और शरीर की सर्व जघन्य अवगाहना में वर्तमान है, उसके ज्ञानावरणी की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य होती है। ये जघन्य योग किसके होता है वो भी हमने यही कंडीशन देखी थी, अब उसको बताएंगे यहाँ 34 नंबर के पृष्ठ पर समझाएंगे। सूक्ष्म निगोदिया जीव अनंत है, उनमें से एक का ग्रहण करने के लिए अन्यतर सूक्ष्म निगोद जीव के ऐसा कहा है, उनमें पर्याप्त का निराकरण करने के लिए अपर्याप्त के ऐसा निर्देश किया है। शंकाकर पूछते पर्याप्त का निराकरण किस लिए किया जा रहा है, तो समाधान अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना से, क्योंकि पर्याप्त की जघन्य अवगाहना बहुत पाई जाती, बहुत यानी उसे असंख्यात गुणा पाई जाती है, क्योंकि हमने जो अवगाहना के टेबल देखे थे सबसे पहले टेबल ने सबसे पहला नाम सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना थी, फिर उसके बाद बादर जीवों की जघन्य अवगाहना दी थी, बादर अपर्याप्तों की, उसके बाद वो पर्याप्तों की जघन्य, इस तरह से हमने उसमें टेबल्स अलग अलग देखे थे, तो बहुत ज्यादा है ना, उसके असंख्यात गुणा ज्यादा है उससे, इसे उसका निषेध किया गया है। विग्रह गति में चूंकि जघन्य अवगाहना भी पूर्व अवगाहना के सदृश है, अतः उसका निषेध करने के लिए त्रिसमयवर्ती आहारक ऐसा कहा गया है। क्या कहते हैं? विग्रह गति में पहले की अवगाहना जैसे अवगाहना होती है, भले वो महामत्स्य मर के वहां आ जाए या निगोद मरकर निगोद में चला जाए, विग्रह गति में तो संस्थान नाम कर्म का भी उदय यहाँ पहुंचने पर होता है, इसलिए पूर्व की अवगाहना उसकी रहती है, इसलिए वो तो त्रिसमयवर्ती आहारक कहा। रुजुगति से उत्पन्न हुआ इस बात के ज्ञापनार्थ, देखो यहाँ बात आई, तृतीय समयवर्ती तद्भवस्त हुआ, यानी उसका भव का भी तीसरा समय है और शरीर धारण करने का भी तीसरा समय है, यानी शरीर धारण उसने पहले ही समय में किया, इसका अर्थ होता है, इसी का अर्थ है रुजुगति से आया हुआ है। ख्याल में है ना उन्होंने कैसे रहे? शंका, एक दो अथवा तीन भी विग्रह करके उत्पन्न कराकर षष्ठ समयवर्ती तद्भवस्थ निगोद जीव के जगन्य स्वामी पना क्यों नहीं देते? यानी वहां तीन मोड़ करो और फिर और छठवें समय में जगन्य कह दो। नहीं, क्योंकि पांच समयों में असंख्यात गुणित श्रेणी से वृद्धि को प्राप्त हुए एकांत अनुवृद्धि योग से बढ़ने वाले उक्त जीव के बहुत अवगाहना का प्रसंग आता है। अच्छा, योग के कारण उसकी अवगाहना भी ज्यादा हो रही है यहाँ पर। क्योंकि जीव भी बढ़ता है ना, बिल्कुल बढ़ेगा। हाँ, ज्यादा बढ़ेगा ना, क्योंकि पहले उसके हमने देखा था आयत होता है, फिर स्क्वायर होता है, फिर गोलाकार होता है, इसलिए तीसरा समय लिया था, उसके एरिया मिनिमम होती है वहां पर। और यहाँ कहते कि उसको एकांत अनुवृद्धि योग से आगे चल के और बढ़ेगा। तो शंकाकार पूछते, प्रथम समयवर्ती आहारक और प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ हुए निगोद जीव के जगन्य क्षेत्र का स्वामीपना क्यों नहीं देते? प्रश्न क्या है? योग तो वहां पर भी बढ़ रहा है ना, तीसरे समय तक तो एकांत अनुवृद्धि वहां पर भी बढ़ गई है, पहले समय से दूसरे में, दूसरे से तीसरे समय में योग वहां पर भी बढ़ा था, तो इसलिए वो रुजुगति से आकर पहला समय क्यों नहीं लिया, ये उनका प्रश्न है। समाधान, नहीं, क्योंकि उस समय आयत चतुरस्र क्षेत्र के आकार से स्थित उक्त जीव में अवगाहना का स्तोकपना बन नहीं सकता। आयत चतुरस्र यानी वो तो जिसको लंबा ने जगन्य अवगाहना के लिए सारी कंडीशंस बताई। पहले समय में वो आयत चतुरस्र होता है। फिर शंका, रुजुगति से उत्पन्न होने के प्रथम समय में आयत चतुरस्र स्वरूप से जीव प्रदेश स्थित रहते, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, 35 पेज पर आते हैं, वह आचार्य परंपरागत उपदेश से जाना जाता है। अब शंका कहते, पहले समय छोड़ दो, द्वितीय समयवर्ती आहारक और तद्भवस्थ होने के द्वितीय समय में वर्तमान जीव के जगन्य स्वामीपना क्यों नहीं देते? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि उस समय में भी जीव प्रदेश समचतुरस्र स्वरूप से अवस्थित रहते हैं, समान चौकोर, आयत था लंबा था, अभी वो इक्वल हो गया। तो कहते, द्वितीय समय में जीव प्रदेशों का विषकंभ से समान आयाम होता है, यह कहाँ से जाना जाता है? जिसको ही नहीं, लंबाई चौड़ाई समान होती है, कैसे समझा? समाधान, वह परम गुरु के उपदेश से जाना जाता है। परम गुरु ने तीर्थंकरों का ही उपदेश ऐसा ही चला आया है, उसी के द्वारा जाना जाता है। अब शंका, तृतीय समयवर्ती आहारक और तृतीय समयवर्ती तद्भवस्थ निगोद जीव के ही जगन्य क्षेत्र का स्वामीपना किस लिए देते हैं? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस समय में चतुरस्र क्षेत्र के चारों ही कोनों को संकुचित करके जीव प्रदेशों का वर्तुल अर्थात गोल आकार से अवस्थान देखा जाता है। शंका, उस समय जीव प्रदेश वर्तुल आकार से अवस्थित होते हैं, यह कैसे जाना जाता है? उसका समाधान वह इसी सूत्र से जाना जाता है। एक कोण भी उसके मिट गए तो उसके एरिया कम हो गई। अब कहते उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर जघन्य उपपाद योग, यानी वो जीव कौन सा जीव लिया? जघन्य योग वाला लिया। पहले समय तो उपपाद योग होता है तो जघन्य उपपाद योग, और जघन्य एकांत अनुवृद्धि योग से ही तीनों समयों में प्रवृत्त होता है। ये उसके एकांत अनुवृद्धि भी जो है, वृद्धि का प्रमाण अलग अलग जीवों में अलग हो भी सकता है, यहाँ जघन्य एकांत अनुवृद्धि हुई है। वृद्धि का प्रमाण भी जिसको मिनिमम है ऐसा जीव लिया है जघन्य उपपाद योग। हाँ, और जघन्य एकांत अनुवृद्धि हाँ दूसरे और तीसरे समय तक और दो समय के लिए वो भी जघन्य रखना, क्योंकि जो वृद्धि का प्रमाण है वो भी हीनाधिक हो सकता है, यहाँ वह भी जघन्य मिनिमम में मिनिमम रखा। तो कहते इसलिए जघन्य योग वाले के ऐसे सूत्र में निर्देश किया है। तृतीय समय में अजघन्य भी अवगाहनाएं होती है, अतः उनका प्रतिषेध करने के लिए शरीर की सर्वजघन्य अवगाहना में वर्तमान, अवगाहन में नहीं अवगाहना में वर्तमान हुआ, उसको वर्तमान करो। मैंने सूत्र में एक एक जो कंडीशन बताई है उसका कारण यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि तीसरे समय में अवगाहन में लिखा है ना, अवगाहना में चाहिए। शरीर अवगणा है वर्तमानस से, वर्तमान हुआ है वो वर्तमान करो। इन विशेषणों से विशेषता को प्राप्त हुए सूक्ष्म निगोद जीव के ज्ञानावरणीय की वेदना क्षेत्र से जघन्य होती है। इन्हें सब कंडीशंस उन्होंने बता दिए क्या क्या होता है। यहाँ उपसंहार कहते हैं, उपसंहार ने उसका प्रमाण बताएंगे, एरिया कैलकुलेट करके बताएंगे। एक उच्छेद घनांगुल को स्थापित करके, इन्हें घनांगुल जिसको हम कहेंगे, सूचंगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल, अंगुल इंटू अंगुल इंटू अंगुल, उसको कहते हैं घनांगुल। और उसको कहा उच्छेद घनांगुल, क्योंकि वो कौन से अंगुल से हुआ है? सूचंगुल जो है जिसको हम उच्छेद अंगुल कहते हैं, उच्छेद अंगुल, क्योंकि अंगुल भी तीन प्रकार के हैं। कौन से? एक होता है उच्छेद अंगुल, एक होता है प्रमाण अंगुल और एक होता है आत्मा अंगुल। यानी जिस जिस जीव की जितने एरिया अभी अभी कितने है इतने हमारी अवगाहना, तो हमारा आत्मांगुल कितना होगा? इतना होगा। अभी जो चतुर्थ काल के बीच वाले के, उनका जो मध्यम कोई आकार होगा, और जो अवसरपणी वाला पहला तीर्थंकर उसका तो प्रमाण अंगुल होगा। हाँ तो उससे अंगुल है नहीं, वो तो यव से आठ यवों का एक अंगुल होता है वो वाला माप। हाँ उसको अंगुल कहते। देखो एक उच्छेद घनांगुल को स्थापित करके, जिसको हम आठ जव का एक उच्छेद अंगुल होता है, हमने देखो तो आठ आठ गुना होते हमने देखा था। जव कहो यव कहो एक ही बात है। हाँ इतना होगा ना, आठ जव होगी उसमें, ऐसा लिखो या ऐसा। नहीं नहीं ये तो सिंगल, अभी उसको उसको घन करो, अंगुल इंटू अंगुल इंटू अंगुल। हाँ क्यूबिक सेंटीमीटर ले लो ना, क्यूबिक सेंटीमीटर इतना होगा, क्यूबिकल है ना वो, घनांगुल यानी क्यूबिकल। और उसकी निगोद क्या होगा ना, उसके असंख्यात पे भाग होती है, ये वो तो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहे। तो कहते उच्छेद घनांगुल को स्थापित करके तत्प्रायोग्य पल्योपम के असंख्यात वे भाग का भाग देने पर ज्ञानावरणीय का जघन्य क्षेत्र होता है। हमने जब जीव कांड में अवगाहना के भेद देखे थे तो वो जघन्य अवगाहना से आगे आगे अवगाहना जो होती है, जैसे सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त से सूक्ष्म वायु का एक की जघन्य अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुना है, अवली के असंख्यात वे भाग गुना है। ऐसे पांच बार अवली का असंख्यात भाग, फिर सूक्ष्म से बादर की ओर गए तो पल्ले का असंख्यात भाग, फिर उसके अपने में अवली का असंख्यात भाग, इस तरह से वो पल्ले का असंख्यात भाग अमुक कितने बार स्थापित किया, अवली का असंख्यात भाव इतना बार स्थापित किया, इस तरह से उसका प्रमाण लिया था। पहले उसको उल्टे करके भागार गुणाकार करके उसको स्थापित किया। आगे का जब कहेंगे अवली के असंख्यात भाग गुणा है तो उसके गुणा करेंगे तो उसे छेद में से उसका एक माइनस कर देंगे। कुछ 22 बार तो हमने वो देखा था, 19 बार वो पल्ले का संख्या, इस तरह से कुछ था, मुझे एग्जैक्ट ये याद नहीं है उसकी संख्या। तो इस तरह से वो उसकी जो जघन्य अवगाहना हमने स्थापित की थी संदृष्टि के द्वारा। तो कहते कि इसलिए कहते तत्प्रायोग्य पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देने, बहुत बड़े असंख्यात से भाग देंगे। ज्ञानावरणीय का जघन्य क्षेत्र होता है, यानी वो उच्छेद घनागुल है इतना, और उसके इतने पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया इतना बड़े असंख्यात से, तो जाके जो संख्या आएगी यानी जो अवगाहना का प्रमाण आएगा घनाकार। अरे मैं हम कहें नहीं, माइक्रोस्कोप पे नहीं दिखेगा, देही तो है ना, इतना जाना है, और इतनी अवगाहना में अनंत जीव रहते हैं।
ये परसों ऐसी बात हुई थी, एक जगह से फोन आया था जयपुर से, वहाँ के स्टूडेंट ने फोन किया था। वो बोलते हैं शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, एक इंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक सारे जीव नपुंसक होते हैं, और क्या बोलते हैं वातावरण में तैयार होते हैं,
सम्मूर्छन
होते हैं। तो हम तो देखते हैं कि जो चींटियां होती है उनके अंडे भी होते हैं, ये भी होते हैं, तो ये कैसा? मैंने कहा देखो भाई, केवली भगवान ने जो बात बताई वो सच्ची, यक्षोक्षम ज्ञानी ने बात बताई वो सच्ची, न बोलते आजकल के साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है ऐसा है वैसा है। मैंने कहा वही बात आपको नक्की करना है, वैसे आप कह रहे हैं कि कितना छोटा होगा, जो छोटा होगा केवली ने जाना है, हमारे माइक्रोस्कोप या किसी को में दिखता ही नहीं है, बट वन हैज टू एक्सेप्ट इट।
कुछ दिखता ही नहीं ना, वायरल टेम्परेचर हो गया, वायरल होगा तो उसको तो मान लेते हैं। मैं हमेशा वायरस की बात बताती हूँ लोगों को, वायरस किसने देखा है, डॉक्टर ने भी नहीं देखा है, फिर भी उसको मानते हैं। देखो ये जो जघन्य की बात हुई, पहले हमने उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट देखे थे, अब यहाँ क्या कहते, जघन्य और अजघन्य देखना है। तो कहते तव विदीरम अजघन्य, उससे भिन्न अजघन्य वेदना होती है। तव वदीरितम यानी उसके व्यतिरिक्त, यानी उसको छोड़कर बाकी अजघन्य है। उससे अर्थात जघन्य क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र वेदना अजघन्य है, वह अनेक प्रकार है। उसमें से तो एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए तो अवगाहना के जो भेद देखे वो तो है ही है, उसमें आगे फिर वो पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य की, उसके आगे उसके मारणांतिक के द्वारा उसको बढ़ाते 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 गए। यानी वो जो जघन्य ने वो सारा अजघन्य के भेद कहेंगे, उन बहुविध क्षेत्र वेदनाओं के स्वामित्व की प्ररूपणा करते हैं। जैसे हमने अनुत्कृष्ट के स्वामित्व देखे, अभी यहाँ ही बताएंगे वह इस प्रकार है। पल्ल्योपम के असंख्यात भाग का विरलन करके घनांगुल को समखंड करके देने पर एक एक रूप के प्रति सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना प्राप्त होती, क्योंकि हमने देखा था ना घनांगुल का असंख्यात भाग है, कौन सा असंख्यात, पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दो, दूसरी भाषा में वो पल्ले के असंख्यात भाग का विरलन करो, एक एक लिखो और घनांगुल उसमें बांट दो तो हमें जघन्य अवगाहना मिल जाएगी। पश्चात इसके आगे एक प्रदेश अधिक अवगाहना से वहां ही स्थित, वहां ही ने निगोद पर्याय में वही सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक वाला ही जीव लेना, जीव अजघन्य क्षेत्र वेदना के जघन्य स्थान का स्वामी है, यानी अजघन्यों में से मिनिमम वो भी निगोद ही है, तीसरा स्थान भी निगोद होगा, चौथा स्थान भी निगोद, ऐसे असंख्या स्थान तो निगोद के ही होंगे, फिर जाके सूक्ष्म निगोद सूक्ष्म वायु का निवाते ऐसा कुछ वो आता है ना, निवाते अप्रु निवाते अप्रु, इस क्रम से होते वो असंख्यात गुना असंख्यात गुना, अ और प्रु अपकायिक और ते निवाते अप्रु पृथ्वी का,
निवाते
निगोद, वायु का एक, तेज का एक, अप का एक और पृथ्वी का एक, यानी अप का एक, अप का एक। असंख्यात गुणी है, परंतु उसके आगे वो असंख्यात गुना होने तक सारे ही पहले स्थान एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए निगोद के हो गए, ये उसका कहना है। और वो भी सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त है, और वहां तक वो समाप्त नहीं होते। जहाँ वायु का एक किस चालू होती है वहां वो निगोद के स्थान है ही है, जहाँ तेज का एक किस चालू होती है वहां निगोद के भी स्थान है ही है। यानी आगे जा कर जघन्य का सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की है, जो उत्कृष्ट अवगाहना तक के स्थान तो इसके हो गए, इन बिटवीन वो सूक्ष्म निगोद पर्याप्त के भी स्थान बताएंगे, इन बिटवीन बादर निगोद के जघन्य भी स्थान बताएंगे। यानी केवल अकेले निगोद के स्थान देखना है तो इस जघन्य से लेकर बादर निगोद के उत्कृष्ट के तक, वो उत्कृष्ट स्थान तक, इतने अनंत नहीं होते, असंख्यात ही होते। इन बिटवीन फिर कौन से स्थान पर कौन सा होता है शुरू, वो सब अवगाहना के टेबल में आया है।
हाँ,
असंख्यात गुना, परंतु जब वायु कायिक से तेज कायिक के असंख्यात गुना जघन्य अवगाहना हो,
वायु
हाँ वहाँ निगोद के भी चलेंगे, वायु कायिक के भी चलेंगे। फिर जहाँ से अग्नि कायिक यानी तेज कायिक की चालू होगी वहाँ निगोद के भी स्थान है, वायु कायिक के भी है, अग्नि कायिक के भी है, तीनों से हाँ उससे असंख्यात गुना आगे वाला हो जाएगा। यानी वो जो केवल इसको एक एक प्रदेश कितना सूक्ष्म है, तो एक एक प्रदेश से बढ़ती हुई अवगाहना के इतने सारे भेद बताए उन्होंने।
एक प्रदेश कितना
सूक्ष्म, अरे अंगुल का असंख्या तो अब ख्याल में नहीं आता है, अब एक प्रदेश कितना सूक्ष्म होगा। वो तो आकाश का एक प्रदेश, यह जीव के प्रदेश, जीव के प्रदेश। यहाँ लिखा ना पहले समखंड करने पर वो जघन्य अवगाहना प्राप्त है, पश्चात इसके आगे एक एक प्रदेश अधिक अवगाहना से वहां वहां ही स्थित निगोद के ही जीव अजघन्य क्षेत्र वेदना के जघन्य स्थान का स्वामी है। शंका, यहाँ द्वितीय क्षेत्र विकल्प कौन सी वृद्धि के द्वारा वृद्धिंगत हुआ है? यानी एक प्रदेश की वृद्धि हुई है, और मिनिमम प्रदेश कितने देखे थे, वो असंख्यात थे, तो असंख्यातवा भाग बढ़ा ना, कौन सी वृद्धि से वृद्धिंगत होते हैं, यानी कितने भाग, कितवा भाग बढ़ा, संख्यातवा भाग बढ़ा कि कितना बढ़ा, तो कहते असंख्यातवा भाग बढ़ा। समाधान, वह असंख्यात भाग वृद्धि के द्वारा वृद्धिंगत हुआ है, वह इस प्रकार से। अभी अपनी भाषा में तो समझना आसान है कि मिनिमम अवगाहना भी वो कौन सा था, घनांगुल का असंख्यात भाग वाला असंख्यात था, था तो असंख्यात, मिनिमम अवगाहना कितनी है, घनांगुल का असंख्यात भाग, जो असंख्यात प्रदेश है, एक दो प्रदेश नहीं है, वो असंख्यात में एक प्रदेश की वृद्धि हुई, तो एक ये संख्या असंख्यात का कितवा भाग है, असंख्यात भाग है। ये जो हजार को हजार से भाग देंगे तो एक आता है, तो हजार में एक की वृद्धि हुई है, हजारवें भाग की वृद्धि हुई, ऐसे असंख्यात में भाग की वृद्धि हुई। अब उनको ये विरलन वगैरह पद्धति से बताएंगे, अपनी भाषा में पहले समझना। देखो वही इस प्रकार से है समाधान की दूसरी लाइन, जघन्य अवगाहना का नीचे विरलन करके ऊपरी में एक अंक के प्रति प्राप्त राशि को समखंड करके देने पर एक आकाश प्रदेश प्राप्त होता है। पहले हमने क्या किया था, पहले के असंख्यात भाग को विरलन कर दिया था और उसके ऊपर घनांगुल को बाढ़ दिया था, तो हर एक एक के प्रति मिला था जीव की अवगाहना, मिनिमम अवगाहना ही थी।
पहले क्या किया,
पहले देखो देखो पहले में पहले के असंख्यात भाग को विरलन किया, एक 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 लिख दिया, और उसके प्रति क्या बांट दिया उन्होंने, घनांगुल बांट दिया, घनांगुल को उसमें बांटा, तो हरेक के ऊपर जघन्य उगाहना आई। अब क्या करना है, अब किसको करना, जघन्य उगाहना का विरलन करना। मेरी भाषा में पहले हमने जो पल्ले का असंख्यात्वा भाग बांट दिया और उसमें घनांगुल बांट दिया तो हरेक के माथे पर हजार हजार आया, मान लेते ना हजार। अब क्या करना, हजार का विरलन कर दो, बात वही है। अभी जघन्य उगाहना का विरलन करो, उसको एक 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 में बांट दो और ऊपरी विरलन के प्रति जघन्य उगाहना ही उसमें बांट दो। विरलन भी जघन्य उगाहना का करो, यानी विरलन हजार का करो और उसमें हजार प्रदेश बांट दो, यानी प्रत्येक एक के प्रति एक एक आएगा। समझ में आती है ना बात। यानी नीचे भी एक एक आएगा, ऊपर भी एक एक आएगा। फिर से पढ़ती हूँ इसको। जघन्य अवगाहना का नीचे विरलन करके, क्योंकि ऊपर के विरलन उन्होंने बताए थे, पल्ले का असंख्यात भाग का विरलन किया था और उसमें घनांगुल को बाढ़ दिया था तो हरेक के माथे पर जघन्य अवगाहना आई थी, ये ऊपर का विरलन हुआ। अब नीचे का विरलन, जघन्य अवगाहना का ही विरलन करो और उसमें जघन्य अवगाहना को बाढ़ दो, इक्वली समखंड करके देना, उसमें बाढ़ देना, यानी हजार में हजार बाढ़ दो तो हरेक एक के प्रति एक एक आएगा। तो कहते ऊपरी में एक अंक के प्रति प्राप्त राशि को, यानी ऊपरी में एक अंक के प्राप्त राशि कौन सी थी, वो जघन्य अवगाहना ही थी। यानी जघन्य अवगाहना का विरलन करो और जघन्य अवगाहना वाली राशि को समखंड करके देने पर एक आकाश प्रदेश प्राप्त होता है। ये समझ में आई बात। हाँ ब्रह्मा, क्यों बहुत कठिन हो रहा है? देखो ऊपर हमारे ऊपर हमने पल्ले का असंख्यात भाग का विरलन किया और उसमें एक घनांगुल को बांट दिया, दूसरी भाषा में वो निगोद की जघन्य अवगाहना मिली हमको, इसको हम जघन्य अवगाहना के, हमने उसको समझाने के लिए हजार मान लिया। अब नीचे विरलन किसका करना, जघन्य अवगाहना का, यानी हजार का विरलन करो और उसमें हजार बांट दो तो हरेक के एक के प्रति एक एक आएगा, यही कह रहे हैं, एक आकाश का प्रदेश आता है। अब इतने मात्र से अधिक उपरिम एक रूप धरित राशि की चूंकि इच्छा है, यानी हमारी इच्छा क्या है, जघन्य अवगाहना प्लस एक,
जघन्य अवगाहना को
नहीं, जघन्य अवगाहना को जघन्य अवगाहना से भाग दिया तो एक संख्या आ गई। अब हमको दूसरा भेद चाहिए ना, जघन्य अवगाहना के ऊपर का भेद कितना है, जघन्य अवगाहना प्लस वन, यानी हजार प्लस वन हमारी भाषा में। तो कहते के एक रूप से अधिक हमको कितना चाहिए, एक्स्ट्रा एक चाहिए, यानी हजार में हमको एक एक्स्ट्रा चाहिए। एक रूप से अधिक अधस्तन विरलन में यदि एक रूप की हानि पाई जाती है, हमने क्या किया है, देखो अपनी भाषा में समझते हैं हमें, एक ही बात है ना, अवगाहना उसने एक आकाश का प्रदेश एक्स्ट्रा व्यापा है उसने, जीव के प्रदेश तो उतने के उतने थे, जीव का प्रदेश कितना है, लोक प्रमाण है, वो कितने क्षेत्र में आए थे, हजार, हमारी भाषा में, मेरी भाषा में हजार में, यानी घनांगुल के असंख्यात भाग में आए थे, यानी हजार के बदले अभी वो जीव के प्रदेश
एक प्रदेश प्राप्त होता
है। वही तो पहले हजार प्रदेशों में व्यापता था जीव, अभी हजार और एक प्रदेश में व्यापेगा, इसका अर्थ हुआ ना, एक प्रदेश एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा एक प्रदेश, वही तो। ये विरलन की भाषा में समझाते हैं ना तो हमको वो बहुत कठिन लगता है।
मुझे लगा ये सब प्रदेश होते, फिर आकाश का एक प्रदेश होता, ये सब।
देखो पहले हमने विरलन किया और उसके प्रति घनांगुल दिया तो हरेक के प्रति हमारी मेरी भाषा में हजार हजार आ गए, हरेक एक के प्रति हजार हजार आ गए। अब दूसरा विरलन किया, विरलन किसका किया, हजार का किया, यानी हजार बार एक एक लिखे और उसमें हजार समखंड करके दिए तो एक एक आया। अभी अपना पहले सोच लो, पहले जो द्रव्य विधान में हम देखते थे, यहाँ का एक हजार हमने खुला कर दिया, 1000 की नोट और उसमें प्रत्येक में बांट दिए, एक मिट गया आगे के 1000 तैयार हुए। उसका क्या होता है, एक अधिक अधिक नीचे का विरलन प्रमाण जाने पर एक की हानि होती है। यहाँ ये भागहर की हानि बतानी उनको, ये अपनी भाषा में समझना आसान है, उनकी भाषा में जरा तो प्रयत्न करेगा। तो नीचे का विरलन यानी उपकार का 1000 खोल दिया और नीचे में बांट दिया, यानी ऊपर के जो हमारे जो स्थान थे इतने पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, उसमें से 1000 एक स्थानों में जाकर एक की हानि, तो टोटल पल्ले के असंख्यात विभाग स्थानों में कितने की हानि, यानी वहां का भागहार निकालने का ये तरीका है। देखो फिर से नीचे से चौथी लाइन, अतः एक रूप से अधिक अधस्तन विरलन में यदि एक रूप की हानि पाई जाती है, यानी 1001 में एक की हानि हुई क्योंकि 1000 को खोल दिया और आगे के 1000 में बांट दिया, तो ऊपरी विरलन राशि में, ऊपरी विरलन राशि हमारी पल्ले का असंख्यात भाग है, वह कितनी पाई जाएगी। नीचे की अधस्तन विरलन कितना था, एक अधिक अधस्तन यानी जघन्य अवगहना प्लस 1, इतने प्रदेशों में एक रूप की हानि, तो इतने में कितने की होगी। इस प्रकार यानी जो पल्ले का असंख्यात भाग वाला भागहार था वो भागहार में कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारी हमारी लब्ध राशि एक प्रदेश से एक्स्ट्रा आती है, तो पल्ले के असंख्यात भाग में कुछ तो कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा ही नहीं, फिर भी कुछ कम कहेंगे उसको। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करके लब्ध को समच्छेद करके ऊपरी विरलन में से घटा देने पर, ये हमारी हमेशा की पद्धति रही। पल्ले का असंख्यात भाग ऊपरी विरलन था, अभी हमने त्रैराशिक कैसा किया, 1000 प्लस 1 में एक की हानि, 1000 प्लस 1 यानी क्या है, जघन्य अवगहना प्लस में एक की हानि, ये त्रैराशिक हुआ कि जघन्य अवगहना प्लस 1 में एक की हानि, तो पल्ले के असंख्यात भाग में कितने की हानि, तो यह हानि का प्रमाण मिलेगा, वह हानि का प्रमाण पल्ले के असंख्यात भाग में से माइनस करना। तो जो नया जो उत्तर आएगा, जघन्य जघन्य अवगहना का भागहार होता है, ये भागहार का प्रमाण है, यानी 1000 के लिए जो भागहार था, कौन सा भागहार था, घनांगुल को पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देने पर 1000 यानी जघन्य अवगहना आई थी। अभी हमको कौन सा चाहिए, 1000 प्लस 1 जघन्य अवगहना प्लस 1 चाहिए, लब्ध राशि एक प्रदेश से ज्यादा हुई तो जो भागहार में कुछ कम हो जाएगा, ये नया भागहार होगा, यानी पल्ले के असंख्यात भाग माइनस हानि, ये नया भागहार होगा वहां का। यानी अजघन्य में से जो मिनिमम वाला उसका भागहार होगा। अब हम 37 पेज पर आते हैं। जघन्य क्षेत्र के ऊपर दो आकाश प्रदेशों को बढ़ाकर स्थित जीव द्वितीय अजघन्य क्षेत्र का स्वामी होता है। ये समझ में आ रहे वाक्य क्या बता रहे वो, पहले हमने एक ही प्रदेश बढ़ाकर अवगाहना देखी थी, अब दो प्रदेश बढ़ाना है, यहां भी असंख्यात भाग वृद्धि ही है। यथा अधस्तन विरलन के रूपाधिक द्वितीय भाग से अभी अधस्तन विरलन का रूपाधिक द्वितीय भाग से उपरिम विरलन राशि को खंडित कर उसमें से एक खंड को उपरिम विरलन में से कम कर देने पर द्वितीय क्षेत्र का भागहार होता है, क्योंकि पहले एक प्रदेश था अब दो प्रदेश हो गए, दो प्रदेश एक्स्ट्रा हुआ, तो नीचे का अधस्तन विरलन हमने कितना किया था मालूम है ना, जघन्य अवगहना ये अधस्तन विरलन था, अब यहाँ का अधस्तन विरलन जो था उसके रूपाधिक द्वितीय भाग से, यानी उसका द्वितीय भाग करना है। पहले एक देख देखो, पहले हमने 1000 का प्रदेश विरलन किया था, उसमें 1000 बांट दिए थे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, 500 का विरलन करो उसमें 1000 बांट दो तो दो दो प्रदेश आ जाएंगे। पहले हमने 1000 में 1000 बांटे थे, अब यहां अधस्तन विरलन हमारा 500 हो जाएगा क्योंकि हमको दो दो मिला ना, तो 500 का विरलन करेंगे उसमें 1000 बांट देंगे। तो हर एक एक के प्रति दो दो आएंगे, एक एक के प्रति दो दो आएंगे। अभी हमारा त्रैराशिक कैसा होगा, हमने 1000 निकाले और उसमें से दो दो आगे के 500 में चले गए, नीचे का विरलन 500, तो 500 प्लस एक में एक की हानि, तो पल्ले के असंख्यात विभाग में कितने की हानि, यानी यहाँ का नया भागहार हमको लाना है। अभी उसी लिए क्या कहा, अधस्तन विरलन के रूपाधिक द्वितीय भाग से, यानी अधस्तन विरलन का आधा, अधस्तन विरलन पहले हमारा 1000 था उसका आधा ने 500 और उसमें रूपाधिक यानी 500 प्लस एक, हाँ 500 प्लस एक में 500 एक में एक की हानि, तो पल्ले के असंख्यात विभाग में कितने की हानि। उनकी भाषा समझने में कठिन होती है क्योंकि हमारा अधस्तन विरलन 1000 का था तो प्रत्येक एक 1000 उसमें बांटने के एक के प्रति एक एक आया था, अभी हमको दो दो प्रदेश चाहिए तो दो दो प्रदेश चाहिए तो अधस्तन विरलन का आधा करो तो 500 का ही विरलन करो तो हर एक के प्रति दो दो मिल जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ का नया भाग कर इसे निकालना, तो ऊपर का 1000 हमने मिटा दिया और 500 में बांट दिया तो दो दो मिले, यानी 500 प्लस एक स्थान जाने पर एक की हानि होती है, तो पल्ले के असंख्यात विभाग में कितने की हानि होगी। इसको कहते हैं रूपा अधस्तन विरलन के रूपाधिक द्वितीय भाग। अधस्तन विरलन हमारा 1000 था, अब उसमें क्या किया, द्वितीय भाग में रूपाधिक किया, 1+1000 का द्वितीय भाग, दैट इज इक्वल टू 501। समझ में आई ना, उनकी भाषा समझ लो तो सब आसान है। उपरिम विरलन राशि को खंडित कर, क्यों खंडित करना, क्योंकि 501 में एक की हानि तो पल्ले के असंख्यात विभाग में कितने की हानि है, इसलिए 501 से पल्ले के असंख्यात विभाग को विरलन करना, उसमें से एक खंड को उपरी विरलन में से कम कर देने पर एक खंड, क्योंकि वो हानि का प्रमाण है, वो हानि के प्रमाण को पल्ले के असंख्यात भाग में से कम करने पर द्वितीय क्षेत्र का भागहार होता है। द्वितीय क्षेत्र ने अजघन्य में से द्वितीय क्षेत्र, अजघन्य में पहला क्षेत्र था जघन्य अवगाहना प्लस एक प्रदेश, अजघन्य में से दूसरा क्षेत्र है जघन्य अवगाहना प्लस दो प्रदेश, ये द्वितीय क्षेत्र का भागार होगा। अब तीन प्रदेश अधिक जघन्य अवगाहना में रहने वाला जीव तृतीय क्षेत्र का स्वामी है, यहाँ पर भी भागार की हानि को पहले के समान ही करना चाहिए। विशेष इतना है कि अधस्तन विरलन का रूपाधिक तृतीय भाग, अभी ये समझना आसान है, रूपाधिक तृतीय भाग है ने 1000 का तृतीय भाग करो और उसमें 1+ करो, यानी नीचे का विरलन होगा 1000 का तीसरा भाग और उसमें अगर हम 1000 बांट देंगे तो हर एक के प्रति हमको तीन तीन प्रदेश मिलेंगे। समझ में आती बात ये। अभी त्रैराशिक कैसा होगा, 1000 का तीसरा भाग प्लस 1 स्थान में जाने पर एक की हानि, तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण भागार में कितने की हानि होगी, जो टोटल प्रमाण आएगा वो पल्ले के असंख्यात में से माइनस करेंगे तो यहाँ तृतीय क्षेत्र का भागहार मिलेगा। यानी जहाँ तीन प्रदेश बढ़ते हैं वहाँ का भागहार कौन सा होगा, तो पल्ले का असंख्यात भाग में जो हानि से हमने माइनस कर दिया उतना होगा नया भागहार। देखो फिर इसको पढ़ते हैं। विशेष इतना है कि दूसरी लाइन, अधस्तन विरलन का रूपाधिक तृतीय भाग यानी हजार के तीसरे भाग में हमने एक ऐड कर दिया। उपरिम विरलन का भागहार होता है, उपरिम विरलन का भागहार होता है ना, उपरिम विरलन जो है पल्ले का असंख्यात होगा उसको इस भागहार से भाग देना है तो वहां हमें हानि का प्रमाण मिल जाएगा। इस प्रकार एक एक आकाश प्रदेश को बढ़ाकर, यानी तब तक वो हम क्या कहेंगे, असंख्यातवा भाग बढ़ा, असंख्यातवा भाग बढ़ा, असंख्यातवा भाग, एक प्रदेश बढ़ा तो भी असंख्यातवा भाग बढ़ा, दो प्रदेश बढ़े तो भी असंख्यातवा भाग बढ़ा। हाँ, इस प्रकार जघन्य परिता संख्यात प्रमाण आकाश प्रदेशों की वृद्धि होने तक ले जाना चाहिए, तब तक उसको असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। यहाँ भागहार लाने की विधि कहते हैं, जघन्य परिता संख्यात से अपवर्तित रूपाधिक अधस्तन विरलन द्वारा।
जघन्य परिता संख्यात प्रमाण आकाश प्रदेश,
हाँ, एक आकाश प्रदेश बढ़ा, दो प्रदेश बढ़े, तीन प्रदेश बढ़े, कितने बढ़े, जघन्य परिता संख्यात प्रमाण प्रदेश बढ़े, यानी हजार डिवाइडेड बाय जघन्य परिता संख्यात, ये हजार हमने एक उसको सिंबल बनाया। तो कहते जघन्य परिता संख्यात से अपवर्तित रूपाधिक अधस्तन विरलन, अधस्तन विरलन हमारा ओरिजिनल हजार था, उसको हमने जघन्य परिता संख्यात से भाग दिया, उसमें वन ऐड किया, इतने स्थान जाने पर एक की हानि हो जाएगी, तो पल्ले के असंख्यात भाग में कितने की होगी, तो हानि का प्रमाण आएगा टोटल। अपवर्तित करके जो वहां उपलब्ध हो उसे उसी में से घटा देने पर, उसी में से ने पल्ले के असंख्यात भाग में से, वहां का भागार ओरिजिनल भागार पल्ले का असंख्यात भाग था, वो भागार में से हानि का प्रमाण घटा देने पर वहां के क्षेत्र का भागार होता है। अब शंका पूछते, इस प्रकार एक को आदि लेकर एक अधिक क्रम से प्रदेशों के बढ़ने पर कितना अधवान जाने पर उपरिम विरलन में एक रूप की हानि पाई जाती है, एक रूप के यानी उसमें एक माइनस कब हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत अपूर्णांकों में संख्या आती है ना पहले में, क्योंकि जो हमने जघन्य अवगाहना देखी थी उसमें एक की हानि होती है, तो पल्ले के असंख्यात विभाग में कितनी होगी, तो पल्ले के असंख्यात विभाग को हमने पहले उससे भाग दिया, एक से भाग दिया, दो से भाग दिया, जो कुछ उससे भाग दिया, मैंने हमने यानी 500 प्लस 1 से भाग दिया, 1000 प्लस 1 से भाग दिया, फिर जघन्य परिता संख्या से भाग देकर प्लस 1 से भाग दिया, तो ये हानि का प्रमाण इतना बढ़ा, तो एक की हानि कहां पर होगी ये पूछ रहे, पूरा एक कहां माइनस हो जाएगा, उसका समाधान, रूप कम उपरिम विरलन से जघन्य अवगाहना को खंडित करने पर उसमें से एक खंड प्रमाण और जघन्य क्षेत्र के विकल्पों के बीच जाने पर एक रूप की हानि पाई जाती है, वही इस प्रकार है। यानी उन्होंने उल्टा कैलकुलेट किया, वो क्या कहते हैं, ऊपर के भागहार में जो पल्ले का असंख्यात भाग था उसमें से एक माइनस कब होगा, यानी भागहार में से केवल एक संख्या माइनस कब होगी, तो उसके लिए उल्टा त्रैराशिक किया उन्होंने। देखो हम कैसा त्रैराशिक करते थे, देखो जब हमने नीचे का विरलन 500 बना दिया था और 500 बनाया था तो 1000 उसमें बांटे थे तो दो दो प्रदेशों की वृद्धि आई थी, और हानि का प्रमाण कितना आया था, पल्ले के असंख्यात भाग माइनस 501 में एक की हानि, तो इतने में कितने, तो पल्ले का असंख्यात भाग डिवाइडेड बाय 501 हानि का प्रमाण आया था, वो हमने पल्ले के असंख्यात भाग में से माइनस किया था जब दो की आई थी, अब तीन का जब था तो 1000 का तीसरा भाग, अभी हमने क्या किया था, 1000 का जघन्य परिता संख्या से भाग प्लस 1, ऐसे करते करते यहाँ ये सबकी टोटल एक कब आएगा, यहाँ पल्ले के असंख्यात भाग का असंख्यात भाग ऐसा वहां उत्तर आता था, तो कहते वहां एक संख्या कब आएगी, यहाँ पल्ले माइनस, तो वो उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे किया उल्टा कैलकुलेट, देखो रूप कम उपरिम विरलन से जघन्य अवगाहना को खंडित करने पर, यानी ये पूरी जो हानि का प्रमाण एक माना उन्होंने, तो ये हानि का प्रमाण यानी कुछ का भागार में हानि का प्रमाण एक माना, इससे जघन्य अवगाहना को खंडित करने पर, ये जघन्य अवगाहना यहाँ हमने जो हजार मानी थी, हमने हजार मानी मानकर बात चल रही थी ना अपनी, तो जघन्य अवगाहना को इससे खंडित करने पर उसमें से एक खंड प्रमाण अजघन्य क्षेत्र के विकल्पों के बीत जाने पर, यानी एक प्रदेश बढ़ा वो एक विकल्प हुआ, दो प्रदेश बढ़े दूसरा विकल्प हुआ, तीन प्रदेश बढ़े तीसरा प्रदेश विकल्प हुआ, तो कहते कि जघन्य अवगाहना को पल्ले के असंख्यात भाग माइनस वन से भाग देना, तो जितनी संख्या आएगी उतने विकल्प वहां जाने चाहिए, एक दो तीन चार ऐसे। अभी हमने पल्ले के असंख्यात भाग और अवगाहना के लिए अन्य अन्य संदृष्टि नहीं बनाई है, तो अगर बनाते हैं तो ये बात ख्याल में आ जाएगी। वह इस प्रकार से रूप कम उपरिम विरलन को, रूप कम उपरिम विरलन है ने पल्ले के असंख्यात भाग को माइनस वन, वो ऊपर का भागहार था, नीचे विरलित कर जघन्य क्षेत्र को समखंड करके देने पर विरलन रूप के प्रति वृद्धि रूप प्राप्त होते हैं, यानी जघन्य अवगाहना डिवाइडेड बाय पल्ले के असंख्यात भाग माइनस वन। अब इनको ऊपर देकर समकरण करते समय, यानी वृद्धि रूप का इतना प्रमाण आया, देखो ये वृद्धि का प्रमाण इतना आया, उनका प्रदेशों में वृद्धि का प्रमाण आया, तो कहते इनको ऊपर देकर समकरण करते समय तीन रूपों के प्रमाण को कहते हैं। कहते रूपाधिक अधस्तन विरलन राशि प्रमाण अध्वान जाकर यदि एक रूप की हानि होती है तो उपरिम विरलन में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर एक रूप आता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने उल्टा करके कैलकुलेशन करके निकाला था, फिर से देखो उनको भागहार में एक की हानि चाहिए थी, यानी हानि का प्रमाण एक आना चाहिए था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पेज नंबर 37 नीचे से तीसरी लाइन फिर से, रूप कम उपरिम विरलन को नीचे विरलन करना है और जघन्य क्षेत्र को समखंड करके देना, जघन्य क्षेत्र जिसको हमने जघन्य अवगाहना कहा था, तो क्या मिलेगा, जघन्य अवगाहना डिवाइडेड बाय पल्ले का असंख्यात भाग माइनस वन है ना, वृद्धि रूप प्राप्त होते हैं। ये वृद्धि किसमें हुई, जघन्य अवगाहना में इतने प्रदेशों की वृद्धि हुई। देखो देखो पहले हमने कैलकुलेशन कैसे किया था, 1000 में एक की वृद्धि हुई, यानी हजार और एक में एक की हानि हुई थी भागहार में, तो पल्ले के असंख्यात भाग में कितने की हानि। अभी हमारा क्या है, ये हजार ने क्या है, जघन्य अवगाहना है और उसमें हमने एक मिला था तो एक की हानि होती है। अभी हमारा यहाँ का विरलन क्या है, वृद्धि का प्रमाण कितना है, जघन्य अवगाहना डिवाइडेड पल्ले का असंख्यात भाग माइनस वन, यानी जघन्य अवगाहना प्लस वन नहीं करना है, प्लस जघन्य अवगाहना डिवाइडेड बाय पल्ले के असंख्यातवा भाग माइनस वन, इतने पूरे है वे नीचे का विरलन आएगा, इसमें एक की हानि होती है, तो पल्ले के असंख्यातवे भाग में कितने की हानि होगी?
ये भी जगह नहीं होगा ना प्लस।
हाँ नहीं नहीं फिर से रूप कम उपरी विरलन को रूप कम विरल उपरी विरलन पल्ले का संख्यात्व भाग माइनस वन नीचे विरलित कर जघन्य क्षेत्र को समखंड करने देने पर विरलन रूप के प्रति वृद्धि रूप प्राप्त होते हैं। वृद्धि कितनी हुई है? अब इनको ऊपर देकर समकरण करते समय हीन रूपों के प्रमाण को कहते हैं रूपाधिक अधस्तन विरलन राशि प्रमाण अध्वान जाकर। अधस्तन विरलन राशि कितनी है? यदि एक रूप की हानि प्राप्ति होती है तो ऊपरी विरलन में कितनी पाई जाएगी? यानी ये प्रमाण भी एक ही आता है, बस इतना ही जान लो भी। तो उन्होंने किस तरह से वो थोड़ा मेरा ही जमलिंग हो गया है, क्योंकि उल्टा करके कैलकुलेशन करते करते उन्होंने ये बात निकाली थी ना। पहले उन्होंने एक कम भागहार स्थापित किया, उसके द्वारा उल्टा करके कितनी वृद्धि हुई वो निकाला, अब उसको उल्टा करके फिर वही कैलकुलेशन कर रहे हैं। रूप कम विपरीत विरलन को नीचे विरलित किया जघन्य क्षेत्र को समखंड करके देने पर विरलन रूप के प्रति वृद्धि रूप प्राप्त होते हैं। अच्छा नहीं, नीचे पल्ले के असंख्यात भाग माइनस एक का विरलन किया और जघन्य क्षेत्र को समखंड करके देना, यानी हर एक के ऊपर जघन्य उगाना डिवाइडेड बाय पल्ले का संख्यात्व भाग माइनस वन आ गए। इनको ऊपर देकर समकरण करते समय, यानी एक जघन्य उगाना इसमें बांट दी इतने स्थानों में तो इतने आते हैं। हीन रूपों के प्रमाण को कहते हैं, यानी कितने हीन हो गए, यानी उसमें से कितना कम करना है। एक जघन्य अवगाहना को मिटाया इतने में गिर दिया, एक जघन्य अवगाहना को मिटाया, जैसे हमने 1000 को मिटाया और 1000 में दिया था तो 1000 एक में एक की हानि आई थी। 1000 को मिटाया था, 1000 में दिया था, आगे के 1000 में दिया था, तो एक जघन्य अवगाहना को मिटाया और इतने आगे के स्थान में दिया, तो 1000 को मिटाया और 1000 में दिया, तो हर एक के प्रति एक एक मिला था, है ना? यानी 1000 मिट गया और 1000 में बढ़ गया, तो एक जघन्य अवगाहना को मिटाया और जघन्य अवगाहना डिवाइडेड बाय इतने में दे दिया, एक हजार को मिटाया तो आगे 1000 में गए, तो 1000+1 आया, तो एक जगन ने अवगाहनों को मिटाया, इतने में दिया प्लस वन आ गया है ना, इतने में एक के हानि, जगन ने अवगाहना मिट गए और इसमें 1000+1 आ गए, 1000 मिट गया और आगे 1000 में बढ़ गया, तो एक जगन ने अवगाहना मिट गई और इतने में आ गई, प्लस वन में एक की हानि, तो इसमें कितनी की हानि, दूसरी संख्या लेकर ही देखना पड़ेगा। यानी ऊपर नीचे पल्ले का असंख्यात्व भाग माइनस वन आता है, इसलिए उसमें एक फाइनल रिजल्ट एक आता है। अब यहाँ पेज नंबर 37 को पढ़ा हमने, उल्टा कैलकुलेशन करके उन्होंने, तो इतने प्रकार जघन्य अवगाहना को जघन्य लास्ट इस प्रकार जाकर जघन्य अवगाहना को चौथी लाइन में जघन्य परिता संख्या से खंडित करके उसमें से एक खंड प्रमाण वृद्धि हो जाने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि ही रहती है। यहाँ समकरण करते समय हो गया, कल देखेंगे इसको। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं